SBS हिंदी।
कला संगीत की राजधानी मेलबर्न शहर में भारत से कलाकार आकर तो अपनी धूम मचाते ही हैं, लेकिन आज हम जिससे आपकी मुलाकात करा रहे हैं वो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई हैं और भारतीय मूल के बच्चों को हिंदी में नाटक के मंचन में प्रवीण बना रही हैं। सुमित्रा पुरी, SBS रेडियो हिंदी पर आपका स्वागत है।
थैंक यू जितार्थ, SBS रेडियो, थैंक यू SBS रेडियो बुलाने के लिए और मेरा परिचय देने के लिए।
परिचय तो आपका आपके काम से है। काम ये है कि कैसे आप उन बच्चों को, ऐसा मुझे अक्सर कहा जाता है, बच्चे हिंदी बोल भी नहीं पाते हैं और आप उनसे नाटक करवा रही हैं।
हाँ जी यही तो खूबसूरती है नाटक मंचन की। मुश्किल से मुश्किल काम कर लेते हैं हम लोग। बच्चों में एक्चुअली वो रूट्स तो है ही, उनके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं और मैं सिर्फ बच्चों को नहीं सिखाती हूँ, हमारे थिएटर ग्रुप में हम लोग 4 साल से लेकर 75 साल तक के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। सभी एज ग्रुप के लोग हैं हमारे साथ और अब तक मैं अराउंड 70 लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ।
मतलब दादा दादी भी आ सकते हैं?
हाँ जी हाँ जी, हमारे साथ सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं और वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं सीनियर्स हमारे प्ले में। वेरी टैलेंटेड बंच वी हैव यहाँ पे, लोकल जितने भी लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, सीनियर्स हैं, वो सब के सब बहुत ही टैलेंटेड हैं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको हिंदी बोलने में इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी छोटे बच्चों को होती है।
तो कैसे करती हैं आप?
उनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उनको मैं समझाती हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ, उसके पीछे की जो डायलॉग है उसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ कि वाई वी आर सेइंग दैट। जो भी हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे हम पिछली बार हमने बर्फ का गोला लिया, इस बार हमने रामलीला को टॉपिक उठाया था, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन ऑफ रामलीला, और उसके बाद हम अब के बार ऐसे एक प्ले कर रहे हैं जो कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के ऊपर है, जो जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, महात्मा गांधी जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। तो व्हाट आई डू इज मैं पूरा बैकग्राउंड बच्चों को बताती हूँ, पहले स्टोरी बताती हूँ उससे रिलेटेड, जितनी भी स्टोरी इनको बिठा के आराम से समझा के पूरा पूरा इंट्रोडक्शन देती हूँ उस कॉन्सेप्ट से। फिर उसके बाद जो कैरेक्टर उनको मिलता है उस कैरेक्टर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बच्चों को कि दिस वॉज द कैरेक्टर एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले। फिर उनको एक एक वर्ड का जो है मीनिंग बताया जाता है, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। थैंकफुली उनके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ पूरा टाइम लगाते हैं घर पे, उनको समझाते हैं, उनको सिखाते हैं, इधर मैं भी सिखाती हूँ, तो फिर वो बच्चे समझ जाते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है, 10-15-20 बच्चे इकट्ठे होते हैं ना आपस में, यहाँ पे खेलते हैं, नाटक भी करते हैं साथ में, उनकी टीम बन जाती है, फिर वो यहाँ पे हिंदी में ही आपस में बात करते हैं।
क्या बात है। और आप जो हैं वो वन वुमन आर्मी हैं, लेखक भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं और इसका मंचन करने के लिए प्रोड्यूसर भी आप ही हैं।
हाँ जी, एक्चुअली आई वांट वन वुमन आर्मी, देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्वड इन दिस प्रोजेक्ट। सी नॉट ओनली मी, मैं लिखती हूँ, राइट करती हूँ, स्टोरी डायरेक्शन भी करती हूँ, प्रोडक्शन भी मेरा होता है, पर मेरे साथ टीम है, बहुत बड़ी टीम है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड है सबसे पहले, जिनकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल होता है, बिकॉज ही इज द फाइनेंसर ऑफ माय प्रोजेक्ट, फर्स्ट फाइनेंसर ऑफ माय प्रोजेक्ट। देन आई हैव स्पॉन्सर्स भी होते हैं, मोस्टली वुमेन स्पॉन्सर्स हैं, हमारे लोकल बिजनेसेस वो स्पॉन्सर करते हैं मुझे। बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो हर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक कोई कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करता है, कोई अपना कोई टैलेंट वहाँ प्रोवाइड करता है, कोई सिंगिंग करता है हमारे इवेंट में आकर, कोई डांसिंग करता है हमारे इवेंट में आकर, तो इस तरीके का सपोर्ट है। फिर उसके बाद मेरी अपनी टीम है जो हमारे थिएटर में इतने सारे लोग हैं, इस बार आई एम वर्किंग विद 40 पीपल, 40 लोगों की टीम है, वो सारे के सारे एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं कि हम वो एक इवेंट प्रोड्यूस कर सके। इस पूरे टीम वर्क के बिना कोई भी अकेला इंसान दुनिया में, कोई भी इंसान अकेला कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता।
मैं आपके नाटकों की सुमित्रा जी लिस्ट देख रहा था, एक का नाम है अब के बरस, एक है रामलीला और एक ये द ट्री, तो ये हिंदी नाटक में द ट्री कैसे आया, द वृक्ष क्यों नहीं हो गया?
द वृक्ष बहुत अजीब लगता, मैंने कोशिश करी उसको वृक्ष बोलने की, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं वृक्ष को कैसे बोलूं, मतलब क्या
दो पेड़,
द ट्री में वॉल्यूम दिखता है। द ट्री एक्चुअली इट्स नॉट टिपिकली बिल्कुल हिंदी प्ले नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ लैंग्वेज, जैसे आजकल हमारे कॉमन हम इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलते हैं।
अच्छा अच्छा,
तो ट्री में वही है, कॉमन नॉर्मल लैंग्वेज है हमारी, इंडियन है प्ले, इंडियन स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, पर जैसे हम यूजुअली इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात करते हैं।
तो ये जो सेकंड जनरेशन के, दूसरी पीढ़ी के जो भारतीय ऑस्ट्रेलियाई बच्चे हैं, उनको उनको सहज करने के लिए है ये।
यस यस, इट्स वेरी इजी एंड इट इज बहुत ही प्यारा नाटक है ये। हमारे जैसे अड़ोस पड़ोस के सीनियर्स होते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, वो क्या हरकतें करते हैं वहाँ पे।
हरकतें बड़ा नकारात्मक शब्द है।
नहीं, वो बहुत एक्चुअली वो हरकतें ही हैं एक तरह से वहाँ पे उस प्ले में। तो वो चीजें फनी लगेंगी आपको, बहुत ही प्यारी लगेंगी वो चीजें जो करेंगे हमारे सीनियर्स उस प्ले में। और वहाँ पे यंग गर्ल्स आती हैं जो एक्सरसाइज करती हैं, वहाँ पे ट्री है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कुछ, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इंसानों को, और वो ट्री आपस में भी बात कर रहे हैं। उसमें से एक ट्री को एक लड़की से प्रेम भी हो जाता है उस प्ले के अंदर, और उस प्ले में एक मर्डर भी हो जाता है। तो बहुत कुछ है उस प्ले के अंदर, वो 45 मिनट्स का प्ले है, उसमें बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आएंगे। फनी भी है वो, काफी कॉमेडी है उसके अंदर, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्ले। ऐसे ही हमारा अब के बरस जो है 200 सालों की जो हमारी क्रांतिकारियों ने जो स्ट्रगल किया था इंडिया को फ्री कराने से पहले, तो उन क्रांतिकारियों का इंट्रोडक्शन है उसमें। कैसे बच्चे आते हैं, वो एक एक बच्चे ने वो रोल प्ले किया। कोई भगत सिंह है, कोई तात्या टोपे है, कोई झांसी की रानी है, कोई सरोजिनी नायडू है, कोई वीका चिकामा है। इस तरीके के रोल सब बच्चों ने प्ले किए और अपने अपना इम्पोर्टेंस बताया कि मैंने कैसे इसमें पार्ट लिया, मैंने क्या किया फ्रीडम फाइट में। तो हर बच्चे की इम्पोर्टेंस है उसमें। फिर गांधी जी आते हैं, गांधी जी बताते हैं कि मैंने क्या किया। सो दैट प्ले इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, वेरी टेस्टफुल। और रामलीला, तो जो हमारी रामलीला है वो हमने कई बार परफॉर्म भी कर लिया अब तक, तो वो भी सबको बहुत पसंद आ रही है। उसमें भी बच्चों ने ही सारा पार्ट किया, बहुत प्यारे प्यारे हनुमान जी हैं उसके अंदर। सबसे अच्छी बात ये है इन नाटकों की, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, उनको लंबे लंबे डायलॉग्स याद हो गए।
अच्छा, सबसे ज्यादा परेशानी किस बात की होती है बच्चों को सिखाने में, जो सबसे मुश्किल चीज होती है?
सबसे मुश्किल चीज ये है कि वो एक जगह टिकते नहीं है।
Okay.
उनको पकड़ पकड़ के लाना पड़ता।
उनको पकड़ के लाना
पड़ता। एक एक लाइन उनकी हुई नहीं कि वो तीन चार इकट्ठे होकर कहीं कोनों कोनों में भाग जाते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कम्युनिटी सेंटर में रिहर्सल हो रही है, अभी उसने अपनी लाइन करी, बाकी के चार पांच बच्चों को पकड़ के वो बाहर खेलने निकल जाएंगे, उनको पकड़ के लाना पड़ता है। फिर उसके बाद मेरे घर पे रिहर्सल होती है, तो मेरे घर के जो मेरे बच्चे का कमरा है खिलौने का, उसमें सारे जाके छोटे बच्चों के खिलौनों के साथ खेलने लग जाते हैं। तो वो कोऑर्डिनेशन जो है वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है हम लोगों को, कि बच्चों को पकड़ के एक जगह पे उनको स्थिर रखना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अदरवाइज वो बहुत प्यारे बच्चे और बहुत जल्दी सीखते हैं। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि बच्चों के अंदर फीड करना बहुत आसान काम है, अच्छी चीजें फीड करना। उनको आप जैसे ग्राउंड प्रोवाइड करोगे, आप उनको जो सिखाओगे वो सीखते चले जाएंगे, क्योंकि उनके माइंड बहुत क्लियर होते हैं। उनके माइंड में हम जैसे कॉम्प्लेक्स है, जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं ना, तो हम दुनिया से जूझते हैं, बहुत सी चीजें झेलते हैं, समाज में बड़े होते हैं, तकलीफें देखते हैं, तो हमारे माइंड में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पर बच्चों के माइंड में बहुत क्लैरिटी होती है, तो आप एक लाइन भी उनको बताओगे ना, वो लाइन मेमोराइज कर लेंगे विद इन सेकेंड।
सुमित्रा जी, आपने बातचीत की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपके नाटक बहुत बेहतरीन होंगे और बच्चे इसी तरह से सीखते रहेंगे।
thank you sbs.com.au/hindi
पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।